ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूरोपीय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
प्रोफेसर साहब, भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और ये ऐतिहासिक रहे हैं। हम इतिहास, भाषा, संस्कृति और तमाम मूल्यों को साझा करते हैं, तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आप इन संबंधों को किस तरह से आंकते हैं?
बिल्कुल, बहुत लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध हैं और अगर कॉन्टेम्पररी पीरियड में देखें तो पिछले 20-25 साल में इसमें और ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब से हमने खासतौर से 2004 में पहले जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या रणनीतिक साझेदारी शुरू की थी, उसके बाद इसको 2010 में इन्हांस पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर के लिए और आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद 2021 में जब वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जब दिल्ली में आए थे, तब इसको और बढ़ा के इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया गया था। और उसी समय से हमने एक रोडमैप 2030 भी एस्टेब्लिश किया, जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें भारत और यूके के बीच में काफी साझेदारी बन सकती है, काफी कन्वर्जेंस हो रहा है। वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत पुरानी है, उसमें तो है ही है। उसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी में, क्लाइमेट में, हेल्थ में, काउंटर टेररिज्म में और खासतौर से मोबिलिटी जो है, माइग्रेशन वगैरह में, इन सब के साथ भी जो है काफी संबंध अच्छे हो सकते हैं इन एरियाज में। और इस सारे पूरा जो जितनी जो साझेदारी बनी उसको एक बहुत सॉलिड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी दिया गया, जिसका मतलब ये था कि नियमित तौर से वहां पे समिट मीटिंग्स होती रही हैं, फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस होते रहे हैं, बहुत सारे डायलॉग्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। और 2023 में इंडिया और यूके में 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स का वो भी डायलॉग भी एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन अब ये है कि जब ये जो ब्रेक्सिट हुआ और ब्रेक्सिट के बाद ये है कि भारत के जो हित हैं और जो भारत की जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं, वो यूके को भी लग रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं वो उनके साथ मिल गई हैं और ज्यादा, क्योंकि वो यूरोप से अपने आप को निकाल के बाहर के देशों के साथ और संबंध मजबूत करना चाहता है, आर्थिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी। और कई दिक्कतें हमको जब वो जैसे ट्रेड डील वगैरह में, जब क्योंकि वहां पे 27-28 कंट्रीज थे, उनके साथ जब हम उनका नेगोशिएट कर रहे थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस टाइम ये लगा हमको कि जो दोनों देश सीधे आपस में जब कोई ट्रेड डील करेंगे तो शायद उसका कोई जल्दी उसका कोई नतीजा निकल आएगा। तो उसके कारण से पिछले 3-4 सालों में जो है और ज्यादा तेजी से उसमें बढ़ोतरी आई। हालांकि ब्रिटेन के अंदर जो है वो काफी पॉलिटिकल आपने देखा बदलाव आते रहे हैं, काफी 4-5 प्रधानमंत्री बदले वहां पे, और उसके बाद अभी 14 साल के बाद एक नई लेबर की सरकार भी आई है। तो लेकिन ये जो भारत और जो यूके की जो साझेदारी बनी है, वो साझेदारी दोनों ने अभी जैसे भले ही यहाँ पे भी हमारा अभी इलेक्शन होके मोर ऑर लेस कंटिन्यूटी है, लेकिन वहां पे तो काफी बदलाव आया और उससे पहले भी काफी उथल पुथल थी, लेकिन भारत को उन्होंने भी एक अपना अच्छा साझेदार माना है और हमको भी लगा है कि इस पूरी जो परिस्थितियां बदली हुई हैं भू राजनीतिक दुनिया में और खासतौर से उनकी जो स्ट्रेटेजी उन्होंने निकाली थी अपने इंटीग्रेटेड अप्रोच वाली, उसमें उनकी जो ब्रिटिश टिल्ट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक जब उन्होंने बोला और उसकी जो नीति उन्होंने बनाई, तो उसमें काफी भारत और यूके में जो है साझेदारी बन रही है। और उसी का जो नतीजा है कि जो अभी वहां के जो विदेश मंत्री हैं, पहले एक महीने के अंदर ही वो भारत का वो दौरा कर रहे हैं और काफी चीजों के बारे में और ज्यादा बातचीत हो रही है।
गुलशन जी, अभी जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कल शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की है और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा है कि भारत ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध है इनमें अन्य समकालीन पहलुओं में क्या संभावनाएं नजर आती हैं?
एक तो जो हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में तो एफटीए की जो नेगोशिएशंस है, जो मुक्त व्यापार का जो समझौता है, वो काफी आगे बढ़ गया है। उसके अंदर लगभग मुझे लगता है 17-18 बार उसके जो है वो राउंड के नेगोशिएशन हो चुके हैं और उसके जो 26 चैप्टर्स थे उसमें से काफी सारे चैप्टर्स के अंदर वो एक सहमति बन चुकी है, तो उसपे उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों में शायद ये जो है इसका कुछ नतीजा आ सकता है, दोनों में एक मुक्त व्यापार की एक जो समझौता है उसके बारे में कुछ कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि वहां पे क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गया था और यहां पे भी इलेक्शन हो रहा था, तब वो थोड़े से नेगोशिएशन पीछे चले गए थे, अब क्योंकि दोनों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है दोनों तरफ से, तो दोबारा से वो चीज तेजी से लागू की जाएगी। उसके अलावा अभी जो भारत ने यूके के साथ अभी जो तकनीकी सुरक्षा साझेदारी को जो एक नया एक और एस्टेब्लिश किया है, उसमें काफी जो एरियाज हैं, 8 एरियाज मुझे लगता है जो उसमें जो उन्होंने अभी आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो टेलीकॉम का है, दूरसंचार का और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम है और एडवांस मटेरियल और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह जो है, तो उसमें दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा महत्व दोनों देश अभी दे रहे हैं और भारत के जितने संस्थान हैं, भारत के जितने भी कंपनीज हैं, उनकी तकनीकी साझेदारी पहले ही से ही काफी ज्यादा ब्रिटिश कंपनीज और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के साथ है। अगर आप इतिहास में भी देखें पिछले 15-20 साल के जो जितना डाटा अगर आप देखते हैं, तो इंडियन कंपनीज के जितने फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ब्रिटिश कंपनीज के साथ उनका रहा है। और दूसरी बात, इसमें अभी जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, सारे जो कंपनीज हैं और सरकारें भी हैं दोनों तरफ से, वो थोड़ा सा अपने आप से जो डीरिस्किंग का जो चाइना से जो एक पूरा जो नैरेटिव चला हुआ है कि चीन के ऊपर काफी डिपेंडेंसी आ गई है, खासतौर से जो क्रिटिकल एरियाज में, वो भारत भी क्योंकि हालांकि हमारा भी चीन के साथ अच्छा व्यापारिक संबंध है और उनके भी अच्छे व्यापारिक और निवेश के संबंध चीन के साथ भी हैं, लेकिन उनको थोड़ी चिंता है, हमको तो भी चिंता पहले से ही थी, तो उससे कैसे वहां से थोड़ा परे हटा जाए और एक भारत क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत यहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑलरेडी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकेजेस है और कंपनीज का लिंकेजेस है, तो ये जो खास तौर से आइडेंटिफाई एरियाज हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक तौर से नहीं, सिक्योरिटी के तौर से भी दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें एक बहुत अच्छी साझेदारी कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा वो एक नई पहल इस दौरे के दौरान देखने में मिल रही है।
प्रोफेसर भूषण, अभी आपने तमाम बातें बताई हैं और थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अगर हम ये बताएं कि ब्रिटेन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के कुछ शीर्ष देशों में शामिल है, तो वहीं ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की कंपनियों की अहम भूमिका रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परस्पर लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की तत्परता का स्वागत किया है, तो भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर इसके क्या मायने हो सकते हैं?
देखिए, ऐसे है कि जब हम उनके साथ देखिए 2007 से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जब वो पहले यूरोपीय संघ के हिस्सा थे तब से नेगोशिएशन शुरू हुए थे और दोबारा से जब वो ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय संघ से बाहर हो गए तो 2022 से फिर से दोबारा से हमने शुरू किया। हम किसी भी देश के साथ जब मुक्त व्यापार के बारे में बातचीत शुरू करते हैं तो दोनों देश निश्चित तौर से पहले अपना होमवर्क करते हैं, उनको लगता है कि संभावनाएं उससे व्यापार और निवेश की और बढ़ जाएंगी, तभी वो नेगोशिएशन पहले शुरू ही करते हैं। फिर वो अलग अलग एरियाज में जब हम जाते हैं तब देखते हैं किसको कितना फायदा हो सकता है, कैसे उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और कैसे नए नए मुद्दे उसके अंदर जुड़ सकते हैं, कैसे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है उन एरियाज का। तो जैसा मैंने बताया कि शायद 14-15 राउंड अभी हो चुके हैं तो काफी मुद्दों पे सहमति बन गई है, लेकिन ये भी देखिए कि कई साल तक भारत भी काफी कॉशियस रहा था मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में। 2014-15 से लेके 20-21 तक हमने बहुत ज्यादा समझौता कोई नहीं किया था बीच में, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे उस टाइम थोड़े स्टैग्नेंट थे काफी साल तक, लेकिन पिछले 3-4 सालों में हमने 3-4 नए एग्रीमेंट्स किए हैं, यूएई के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडिया यूके के कॉन्टेक्स्ट में वो जो इंडिया ने एफ्टा कंट्रीज के साथ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की जो कंट्रीज हैं जो ईयू से बाहर है उनके साथ जो समझौता किया अभी हाल में, तो उससे एक पूरा टेम्पलेट शायद वो यूके के लिए भी बन गया है, क्योंकि वो भी उतनी ही जो है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, स्विट्जरलैंड हुआ चाहे नॉर्वे हुआ, तो जब उनके साथ हम एक मुक्त समझौता कर सकते हैं और उनको उस एरियाज में एक पूरा टेम्पलेट हमारे पास है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को, जैसे उनका जो खास तौर से फूड एंड ड्रिंक सेक्टर है या जो ऑटोमोबाइल्स के जो उसमें जो टैरिफ्स हैं उनमें वो चाहते हैं कि भारत बहुत कमी करे, उसी तरीके से जो सर्विसेज के एरियाज है, टेली कम्युनिकेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसमें उनको काफी संभावनाएं भारत में लगती हैं, तो उसमें वो अपनी मार्केट चाहते हैं, क्योंकि एक तो सिर्फ हमारा जो गुड्स का जो है वस्तुओं का जो व्यापार है उसके अलावा जो है सर्विसेज का जो व्यापार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है भारत और यूके के बीच में और जो इन्वेस्टमेंट है, तो काफी मुद्दे हैं और दोनों के बीच में काफी संभावनाएं हैं, तो आगे मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में उसका कुछ कंक्रीट परिणाम हमको नजर में आएगा और दोनों ही देशों की कंपनीज को इससे काफी कंज्यूमर्स को फायदा हो सकता है।
जी प्रोफेसर गुलशन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जो भारत की यात्रा पर आए डेविड लैमी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत 21वीं सदी की उभरती हुई महाशक्ति है और लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोगों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि इस तरह के बयान कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री का ये बयान देना हमारे लिए क्या महत्व रखता है?
देखिए, उनकी पूरी जो यात्रा है उसका मुझे लगता है कि महत्व इस मामले में है कि भारत और जो यूके के संबंध थे, को जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी वो तो जब हमने देखा कि पिछले कई सालों में उसमें लेते आगे बढ़ी रही है, लेकिन अब कुछ लोगों को चिंता ये थी क्योंकि 14 साल के बाद वहां पे पॉलिटिकल बदलाव आया है और शुरू में जो लेबर पार्टी थी उनकी पॉलिसीज अलग थी और वो पॉलिसीज जो कंजर्वेटिव के साथ भारत की रही है वो वही रहेगी या वो नहीं रहेगी, और उनका जो भारत के साथ जो नेगोशिएशन ट्रेड के चल रहे हैं उसके बारे में उनकी राय क्या है, भारत के बारे में वो वैसा ही सोचते हैं जो पहले दूसरी सरकार सोचती थी, तो उसके बारे में उस चिंताओं को शायद दूर करने के लिए अपने पहले 3 हफ्ते के बाद वहां से जब उन्होंने शपथ ग्रहण किए उसके बाद से वो भारत में अपना जो है दौरा उन्होंने किया है। इसका मतलब वो भी दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो एक नई कॉन्फिडेंस दोबारा से देना चाहते हैं कि जो संबंध भारत और यूके के आगे बढ़ रहे थे वो वैसे ही उसी तरीके से वो भी उतनी ही भारत को महत्व देते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहाँ पे उनकी कंपनीज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ से काफी वो जो माइग्रेशन वहां पे होता है अब, क्योंकि पिछले कई सालों में ये भी दिक्कत आई है क्योंकि हमारे जो लोग वहां जाना चाहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अनस्किल्ड लेबर को जाती है लेकिन जो स्टूडेंट वहां पे जाते हैं, और काफी हमारी जो कंपनी है वो शॉर्ट टर्म मोबिलिटी के लिए जैसे अपने प्रोजेक्ट वहां लेते हैं वहां पे यहाँ के अपने एम्प्लॉइज को वहां भेज के वहां प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको वापस बुलाते हैं, जो शॉर्ट टर्म मोबिलिटी वो कितनी फैसिलिटी उनको दी जाएगी, जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने जाते हैं उनको पढ़ने के बाद कितने देर वहां और रह सकते हैं कि वहां पे कोई अपनी नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें, तो ये सारे मुद्दे जो हैं हमको एक पहले क्लियर पता था कि किस तरीके की पॉलिसी जो है कंजर्वेटिव पार्टी की रही है लेबर, बल्कि उससे कुछ मामलों में हमको लगता है कि उनसे आगे रहेगी, भारत को फायदा रहेगा, कुछ मामलों में हमको जो खासतौर से जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मामले थे तो वो एक पूरा कॉन्फिडेंस जो देना चाहते हैं कि भले ही वहां सरकार बदल गई है लेकिन हम जैसे भारत और यूके के संबंध आगे बढ़ रहे थे हम भारत को उतनी ही तवज्जो देते हैं, उतना ही बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री मानते हैं।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती हुई गतिविधियां हैं और मेडिटेरेनियन के आसपास जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उनको देखते हुए दोनों देशों की साझा प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं?
उसमें एक तो ये है कि दोनों देश ये मानते हैं कि चीन जिस तरह से असर्टिव बिहेवियर पिछले कई सालों से उस पूरे इलाके में दिखा रहा है उसमें जो डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कई मामलों में यूके की भी और भारत का भी जैसे ट्रेड की रही है, भारत की हालांकि उतनी नहीं है जितनी उनकी रही है, और सब देश जो मिलकर एक साथ जो है वहां पे किस तरीके से चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को थोड़ी कम करें, जैसे ये पूरे के पूरा ये जो अभी तकनीकी सुरक्षा साझेदारी भी जो उसमें आप देखें तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, इसलिए उसके टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हम, तकनीकी सुरक्षा साझेदारी की बात कर रहे हैं, मतलब वो चीजें जो टेक्निकल है लेकिन वो सिक्योरिटी से बहुत रिलेटेड है। जब अगर आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन वो सिर्फ कम्युनिकेशन एक इकोनॉमिक मामला नहीं है, क्योंकि किस तरीके से पूरा 5G 6G आगे जो भी जिस तरीके से दूरसंचार बढ़ना है जो खास तो उसके सेमी कंडक्टर्स का इलाका है, आर्टिफिशियल की जो बातें हैं इंटेलिजेंस की, तो ये सारी चीजें जो दोनों देशों के बीच में जो कन्वर्जेंस हो रहा है साझेदारी बनने की बात हो रही है उसका एक काफी बड़ा कारण मुझे लगता है जो चीन का जो बिहेवियर है या चीन से जो चिंताएं हैं दोनों देश को इस पूरे इलाके के अंदर वो भी काफी देखने में आ रहा है जिस तरह से एग्रीमेंट्स दोनों में हो रहे हैं।
जी प्रोफेसर गुलशन, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूरोपीय अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।